7871।
जबरदस्त, एक दफा फिर से आ गई लीजा कॉस्मेटिक्स की वेयरहाउस सेल, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और डिस्काउंट्स का जबरदस्त मेल, जहां आपको मिलेंगे परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, डिजाइनर पर्सेस, चॉकलेट्स और बहुत कुछ। आपको मिलेगा 80% तक डिस्काउंट। तो आइए, एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में सेल स्टार्ट हो रही है July 31st से August 17th तक। ज्यादा डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए lizacosmetics.com।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
स्पीयर एंड मिखे मेंस वियर क्लोथिंग, फिट क्वालिटी वैल्यू एक ही जगह पर। कनाडा में द ओनली साउथ एशियन ओन्ड कस्टम सूटिंग एंड शर्टिंग कंपनी। बर्बरी, हैरी रोजन, होगो बॉस जैसी क्वालिटी आजमाइश शर्त है। 100% इटालियन वुड से बने सूट सिर्फ $249.99 में। और भी जबरदस्त डील्स के लिए विजिट करें स्पीयर एंड मिखे मेंस वियर, 1535 मेरसाइड ड्राइव, यूनिट 1920, मिसिसागा। कॉल 905-670-3388, www.spearandmckay.com।
GTA में सबसे बड़ा पाकिस्तानी हलाल बुफे, 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ अब विलेज टेस्ट पर मिसिसागा में। ब्रेकफास्ट बुफे सैटरडे एंड संडे 11 AM टू 3 PM, डिनर बुफे Friday to Sunday 6 PM to 10 PM। Party hall is open now। Mazid malumat ke liye call karein 647-774-4888, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Village Taste। क्या आपको मालूम है कि खाना बनाते वक्त तवज्जो ना देना आग लगने की सबसे बड़ी वजह है? आप इसमें शुमार ना हो। खाना बनाते वक्त एहतियात करें। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज आपको मोहतात करना चाहता है कि आप दौरान कुकिंग मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल, घर के कामकाज और नशा आवर चीजों का इस्तेमाल ना करें। बारबेक्यू सिर्फ बाहर ही करें। अपने गैराज में बारबेक्यू ना करें या आग लगने वाली लवाजमात अपने गैराज से दूर रखें। अपने गैराज को साफ रखें और अपने साथ दूसरों को भी महफूज रखें। ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से एक पैगाम।
Ayayo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see, must visit designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
CIBC Global Money Transfer के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। CIBC Global Money Transfer की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही cibc.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
शीला के हस्बैंड को देखो, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, दिन भर ऑफिस में काम और रात को शीला के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और एक हमारे नवाब साहब हैं, ऑलवेज लेजी।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपके हस्बैंड को चाहिए SBM का रेजुना, जो एलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज बिना किसी भी साइड इफेक्ट के। फॉर मोर इन्फो कॉल अशोक ऑफ SBM आयुर कैनेडा 905-790-7734 और विजिट एट एयरपोर्ट एंड सैंडलवुड कॉर्नर प्लाजा यूनिट 15 ब्रैम्पटन। रेजुना अब
एना सोना कर लिया हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828।
कैनेडन सब्जी फार्म, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फार्मर्स मार्केट, हर तरह के ताजे ऑर्गेनिक सब्जियां, पौधे, फल की वैरायटी स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म। इस सीजन में पौधे, फूल, फल और सब्जियां लगाने के लिए पनीरी की बेशुमार वैरायटी मौजूद। हेल्दी लिविंग डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, कैनेडन सब्जी फार्म। SOPs का खास ख्याल और हर तरह की मिट्टी, खाद, रोज बुशेज और फ्रूट ट्रीज भी दस्तयाब। 12050 एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट मेफील्ड रोड का इंटरसेक्शन। 9059653633 905-965-3633 sabzifarm.ca।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हां, 416-570-0157।
नान एंड कबाब GTA में 6 लोकेशंस और अब मिसिसागा में भी। नान एंड कबाब, ऑथेंटिक अगवान कुजीन, फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रिल आइटम्स एंड डिनर प्लेटर। गेट $10 ऑफ ऑन ऑर्डर ओवर $30 फॉर पिकअप एंड डिलीवरी। ऑर्डर थ्रू nandk.ca। यूज प्रोमो कोड NAAN90। वैलिड फॉर मिसिसागा लोकेशन ओनली, 90 एनिगम बुलेवार्ड मिसिसागा और ओंटारियो N401-905-501-9889 905-501-9889।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान। सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपेरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कैनेडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, refinancing, debt consolidation, assist in real estate, he will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065।
BOP लाया शरी उसूलों के ऐन मुताबिक पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट। अब घर बैठे दुनिया भर में कहीं से भी ऑनलाइन पाकिस्तान में BOP इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाइए, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, रिबा फ्री सर्टिफिकेट, ऑटो फाइनेंसिंग और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स की अदायगी और बेशुमार दूसरी सहूलियात। अभी www.bop.com.pk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सेलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज, ताकि आप अपनों से रहें दूर रहकर भी पास। मजीद मालूमात के लिए +9242111267200 पर कॉल कीजिए। BOP रखे हर फर्द का ख्याल।
जी सामईन नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से, खुश खुर्रम, सेहतमंद होंगे। भाई हमारा और आपका साथ रहेगा एज यूजुअल 9 o'clock, 9 बजे तक हमने और आपने साथ साथ रहना है। अब से लेके 6 बजे तक हम आपके साथ होंगे और दुनिया भर की खबरें, बात टोरंटो ओंटारियो वगैरह में क्या हो रहा है, उसके अलावा फिर इसके साथ साथ 6 बजे से लेके 7 बजे तक शाहिद जी मेरे साथ आ जाएंगी और हम जो है यहाँ पर पूरी दुनिया की खबरें शाहिद जी लेके आती हैं, पूरी हर जगह की खबरें आपको बाय 7 o'clock यू विल नो एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लीजिए साहब। और फिर 7 से लेकर 9 बजे तक आमिर मियां एंड शाजिया जी यहाँ पर होंगे और एक रंगारंग प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। तो ये हो गया आज का भी। 4:30 बजे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से वुसत उल्लाह खान साहब हमारे साथ होंगे, तो पाकिस्तान और उस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके मुताबिक भी हम उनसे बातचीत करेंगे। और आज सब ट्यूजडे का दिन है, जुलाई की 27th एंड ब्यूटिफुल गॉर्जियस 23 degrees टेम्परेचर राइट नाउ हमारे मोहल्ले में 23 degrees टेम्परेचर, और शाम होते होते बारिश के इम्कान हैं, 21 degrees टेम्परेचर हो गया, और फिर आज रात को फिर बारिश होगी साहब 17 degrees टेम्परेचर के साथ, और कल सुबह इंशाल्लाह ताला हमारी और आपकी आंख खुलेगी तो बारिश एंड 20 degrees टेम्परेचर, कल दोपहर को फिर बारिश है और 25 degrees टेम्परेचर। कल जो है पार्टली क्लाउडी पार्टली सनी, मगर जब क्लाउडी होगा तो बारिश होगी वरना फिर सनी आ जाएगा, तो टेम्परेचर इज गुड, 20 to 25 degrees टेम्परेचर, नॉट बैड। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। जी थर्सडे को साहब फिर बारिश का समय है और 25 degrees टेम्परेचर, और फ्राइडे को कुछ सनी होने के चक्कर में है ये, और 22 degrees टेम्परेचर, और सैटरडे को फिर बारिश है। तो फ्राइडे को थोड़ा सा ब्रेक दिया है आपको, सैटरडे को फिर, अब आप ये देख लें कि आपको शाम को काम से जाने के बाद आप फौरन पाइप निकाल के अपने पौधों को और घास को पानी देने की जरूरत नहीं, अपने आराम से अंदर बैठ के पर्दे खोल ले और सामने बारिश का मजा लें। ये हो गया जी मौसम की बातचीत अब से लेके अगले 5 दिनों तक की। पाकिस्तान पैसे भिजवाने हो तो आपको हम नाम देते हैं मेगा मनी का, मेगा मनी एक्सचेंज, और मेगा मनी एक्सचेंज पे साहब मिस्टर और मिसेस शबाहत होते हैं यहाँ पर, 4196 कौथरा रोड मिसेस सागा में इनका ऑफिस है, मगर आप इनके साथ रजिस्टर हो जाए तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप पैसे इनको भिजवा सकते हैं। मैजेस्टिक मेगा मनी एक्सचेंज, मिस्टर और मिसेस शबाहत का फोन नंबर है 9052794754। आज अगर आपने पाकिस्तान पैसे भिजवाने हो तो आज का रेट आपको मिलेगा 127.50 जो है एक कैनेडियन डॉलर के मिलेंगे। तो आप पाकिस्तान पैसे भिजवाने हो तो मेगा मनी एक्सचेंज का नाम याद रखिए। और क्या बात करें सर आपसे, आपसे बात करेंगे हम के कोविड में क्या हो रहा है। कोविड के गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स में जो हमें रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग टू दैट 129 नए केसेस आए हैं कल। हालांकि हमने आपको बताया था 119 केस हैं, 10 केस ज्यादा बढ़े हैं, मगर एज लॉन्ग एज इट इज गोइंग बिटवीन 5 to 10, 15 अप एंड डाउन दैट्स फाइन, आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेड है, मगर फिर भी 129 केसेस हुए हैं। 100 से नीचे आ जाना तब तो मजा है, 100 से नीचे एंड स्टे देयर। आउट ऑफ 129 37 टोरंटो में है, 22 पील में है, 6 यॉर्क में है, 6 हॉल्टन में है एंड 3 डरम में है। मगर इसके रिलेटेड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 5 डेथ्स भी हुई हैं, और 7 डे रोलिंग मैं देखूं, 7 डे रोलिंग एवरेज जो है 157, यस्टरडे वाज 157 टू, मगर लास्ट वीक 152 था, तो इसमें भी एक 5 की बढ़ोतरी आई है। फिर 13,644 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट अगर देखा जाए तो 0.9% है। 19.1 मिलियन डोजेस जो है ऑन्टेरियो में लोगों को दिए जा चुके हैं, विच इज फेज वन एंड सेकेंड डोजेस बोध मिला के 19.1 मिलियन डोजेस अभी तक दिए जा चुके हैं. 79% ऑफ एलिजिबल ऑन्टेरियंस एज 12 एंड ओवर को एटलीस्ट वन डोज मिल चुकी है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज. एंड 66% हैव फुली वैक्सीनेटेड इन ऑन्टेरियो. तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं है. मैं आपको बताता हूं अभी क्यों मैं कह रहा हूं ये. कोई एक्सक्यूज नहीं है. एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड. पहली भी अगर नहीं लगवाई है तो भाई दैट इज रियली समथिंग टू थिंक अबाउट. आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, मगर हमारी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा यही है कि भाई आप फौरी तौर पर वैक्सीनेट कर लें अपने आप को. बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी जहां पर आप एंटर नहीं हो सकेंगे अगर आपके पास फुली वैक्सीनेटेड की सर्टिफिकेट नहीं है. और सर्टिफिकेट भी कौन सी है, फिलहाल जो सर्टिफिकेट वो कई जगहों पे मांगते हैं वो जगह वो है कि आप जो आपने वैक्सीनेशन की है उसकी आपको कंफर्मेशन जो आती है ईमेल पे, उसकी आप फोटो खींच लें अपने कैमरे में रखें और जो भी आपसे पूछे तो आपने उसको वो दिखा देनी है. कनाडा में इस हफ्ते दिस वीक कनाडा में सब 5 मिलियन डोजेज और आएंगी. 5 मिलियन डोजेज और आएंगी. पहले आपको याद है कुछ महीने पहले बड़ी कंप्लेन हो रही थी पूरी दुनिया के प्रीमियर्स मीन्स कनाडा के सारे प्रीमियर्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा श्योर कर रही थी गवर्नमेंट पे कि भाई साहब आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, हम दुनिया में इतने पीछे रह गए. वी आर नंबर वन इन मोस्ट ऑफ द केसेस नाउ, नंबर वन. तो कनाडा रिसीव करेगा 5 मिलियन नई डोजेज जिसमें के अबाउट 3.6 मिलियन फाइजर की होंगी और 1.4 मिलियन मॉडर्ना की होंगी. और ये इस वीक जब 5 मिलियन हमारे पास पहुंच जाएंगी तो दैट विल काउंट फॉर 66 मिलियन डोजेज जो कनाडा रिसीव कर लेगा एंड ऑफ जुलाई 66 मिलियन ऑल टुगेदर होंगे, विच इज गुड इनफ टू वैक्सीनेट 33.2 मिलियन पीपल. एंड यही हमारी आबादी है 12 एंड ओवर की. तो अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि भाई व्हाई आई डिडंट गेट द वैक्सीनेशन. 66 मिलियन ऑल टुगेदर. अभी अगर आप कनाडा का देखें ना तो 58% ऑफ कैनेडियंस जो हैं 12 एज एंड ओवर उन्होंने टोटली पूरी की पूरी बोथ वैक्सीनेशन कर ली हैं 58% एंड 80% हैव रिसीव्ड एट लीस्ट वन. तो आप देखेंगे 80% ने एक लगाई है तो वो उन लोगों का इरादा तो दूसरा भी लगवाने का है. तो दिस 58% इज गोइंग टू गो अप टू अगर आप जल्दी जल्दी से लगवा लें, क्योंकि हर जगह आजकल तो अब पहले ये था कि भाई 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा आपको, 4 हफ्ते वेट करना पड़ेगा. आप आज बुक कराएं तो आपको 2 हफ्ते के बाद की बुकिंग मिल रही है. भाई देयर आर सो मेनी प्लेसेस राइट नाउ जहां पर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, आप सिर्फ फोन करके उनसे मालूम कर लें. बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जहां पर 12 ईयर्स हम और आप तो हो सकता है वेट कर लें आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा, मगर 12 टू 17 ईयर्स ओल्ड जो है ना वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो लाइन ब्रेक करके, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का होना जरूरी है उधर, तो वो लाइन ब्रेक करके अपना आईडी दिखा के जाके दे डोंट हैव टू वेट इन द लाइन. वो क्यों गवर्नमेंट कर रही है कि ताकि सितंबर तक सारे के सारे 12 टू 17 इयर्स ओल्ड जितने हैं, 12 टू 18 इयर्स ओल्ड जितने हैं, वो सारों को मेजॉरिटी लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए ताकि वो स्कूल्स आराम से जा सकें. तो जिसके बराबर बैठेंगे उसको भी कॉन्फिडेंट होगा कि भाई ये भी फुली वैक्सीनेटेड है, आई एम फुली वैक्सीनेटेड, एवरीबॉडी इज फुली वैक्सीनेटेड, सो दैट विल बी द केस एनीवे. तो मेरा कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है आपको कि आप या आपके दोस्तों अहबाब या रिश्तेदारों में कोई किसी ने अभी तक अगर there are so many conspiracy theories. I don't know if they are right or wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा right है, कौन सा wrong है, ये गलत है, ये गलत है. मगर बड़ा मकनातीस लगा दिया है अमेरिका ने स्पेस में. That's a joke. Okay? ऐसी कोई चीज़ नहीं है. And ये कि हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन के थ्रू वो कोई चिप डाल रहे हैं. I doubt it very much. One in five in United States जो है वो लोग समझते हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है कुछ ड्रामा है. But Canadians don't think like that, and that's why we have 80% at least one vaccination and 58% both the vaccination in Canada, and about 80% Ontario mein, and 66% fully vaccinated. So, you know, we are pretty safe. Anyway, aur bahut sari khabrein hain ji. In khabron ko hum detail mein aapke sath waqtan fawaqtan baat karte rahenge. Aur aap chaliye, sabse pehle to hum shuru karte hain apne program ka aagaaz ek khoobsurat kalam se, janab Khurshid Ahmed saab ki aawaz mein. समा फरमाइए 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है.
हुजूर ऐ सकुई इंतजाम हो हो जाए हुजूर इंतजाम हो जाए सलाम के गुलाम हो जाए सलाम के लिए गुलाम हो जाए और नजर से चूम लो एक बार सब गुंबद को नजर से झूम एक बार सब गुंबद को भला से दिल मेरी दुनिया तमाम हो जाए हो जाए भला से मेरी दुनिया तमाम हो जाए और दुनिया कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के पास लगे चंद गाम हो हुजूर सब कोई इंतजाम हो जाए और तजलियात से बनूं मैं कासे दिल को کبھی جنون کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو مزا تو تب ہے فرشتے یہ کونے کہہ دیں مزا تو تب ہے فرشتے سبھی مد حت خیر انام ہو جا حضور ایسا کوئی انتظام ہو
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے تو انتظار کیسا ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666 ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس
ایشین فوڈ سینٹر 9057931338 آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز گروسریز اینڈ سٹیفلز فریش ڈیری اینڈ ایگ بیوریج اینڈ کنفیکشنری برانڈیڈ فوڈز پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ سویٹس اینڈ سموسہ Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है मालूम कीजिए मुझसे कॉन्टेक्ट करके मैं हूँ फजल वदूद इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से मेरा नंबर है 9056075000 27 سال کا انشورنس اور انڈر رائٹنگ کا میرا ایکسپیرینس ہے میں میک شیور کروں گا کہ آپ کو ایک ایسا پلان دلوایا جائے جو کہ بہترین ہو اور گارنٹیڈ لوئسٹ ریٹ پہ ہو کال کیجئے 9056075000 اور ہاں ہر جمعرات شام کو چینل 770 پہ میرا پروگرام سننا نہ بھولیے گا جس میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بہترین ٹپس انشورنس کے بارے میں
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم کے میدان میں سب سے آگے ہوں تو اسے آج ہی انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج میں رجسٹر کروائیں جسے فریزر انسٹیٹیوٹ نے ٹاپ پبلک ساؤتھ ویسٹرن اونٹیریو کا اسکول قرار دیا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن ٹیکنالوجی اینڈ نیو اسکول بلڈنگ اینڈ اے برینڈ نیو گرینڈ جم مزید معلومات کے لیے کال کریں 519-740-6855
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 4166710577
یس پھر دیکھا نا وہ بہت دور سے آواز آئی ہے مجھے بھائی کون کریں گیس کریں کون ہو سکتی ہیں یہ یس آپ نے صحیح گیس کیا شہزاد جی تھینک یو سو مچ بات کرنے لگے تھے بھائی کی آف تھا اینی وے اس سے پہلے کہ وسعت اللہ خان صاحب آئے اور پاکستان کی متعلق بات کریں آپ سے تو چلیے میں آپ کو ایک گیت کی طرف لے چلتا ہوں استاد راحت فتح علی خان صاحب کی آواز ایک فلم تھی پاکستان کی چین آئے نا اور چین کدھر ملے گا چین تو کسی کو بھی نہیں ہے چلیے صاحب, ہونا تھا پیار, سماع فرمائیے. 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے.
ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
नया बारबेक्यू एंड डिलाइट, खाना हो कुछ मजेदार और दिल हो बेताब तो आ जाए नायाब। जी हाँ, नावल्टी पाकिस्तानी एंड इंडियन फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस, टेक आउट, बैंकवेट एंड केटरिंग, स्पेशल चिकन, गोट, बारबेक्यू और वेजी डिशेस, और तो और नायाब ट्रेडिशनल नाश्ता सैटरडे एंड संडे। टू ऑर्डर कॉल 9056768860, 9056768860, 15 Tandri Road in Mississauga, Nayab Barbecue Delight.
Ji samayne nazreen, welcome back again. 4:34 और 53 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ले चलूंगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आपकी जानी पहचानी शख्सियत मैं कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर, क्योंकि मुझसे अच्छी तरह आप जनाब उस्ताद अली खान साहब को जानते हैं, वेट करते हैं इस टाइम का कि भाई 4:30 तो उस्ताद अली खान साहब पाकिस्तान से आएंगे और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारी चीज़ों पे। मेरे साथ हैं उस्ताद अली खान साहब, मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि वो एक कहावत है ना कि शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, तो पूछा भाई साहब आप शेर आ गया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो शेर साहब ही करेंगे जो करना है उन्होंने। तो मेरे साथ भी आज ऐसी कोई सिचुएशन है, आरफा जी इधर है नहीं आज, तो मैंने कहा कि मैंने वसारा खान साहब को तो लेना ही लेना है, तो आप वही संभालेंगे।
अच्छा, मैं समझ रहा था कि आप जो शेर आया कह रहे हैं तो आप आरफा की कमी महसूस कर रहे हैं इसलिए ये कह रहे हैं।
नहीं, वो तो शेर नहीं होंगे ना फिर,
वो शेर भी है शेर नहीं भी।
आज क्योंकि वो इधर है नहीं तो हम जो बातें करना चाहें ना, हम मैं और आप मिलकर उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो है नहीं भाई, आप माइक पे तो है नहीं, कुछ कह नहीं सकती, अपने घर में सुन रही होंगी या जहां पर भी हैं वो सुन रही होंगी प्रोग्राम, सुन तो रही होंगी जरूर, तो वो सोचेंगी कि यार ये क्या करें, मगर उनके पास उसका चीज का जवाब, क्योंकि हाजिर जवाब बहुत हैं, वो उसका जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होंगे, बड़ी बेचैनी होगी उनको।
हाँ नहीं ठीक है, हमें उनकी बेबसी से फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना अगले हफ्ते वो पूरा इंतकाम लेगा।
हाँ फिर अगले हफ्ते मुश्किल हो जाएगी। मुताल खान साहब, पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि तहरीक तालिबान और फिर तालिबान, तो यू एंड आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई ये यार तहरीक तालिबान है, वो तालिबान है, मगर क्या फर्क क्या है इन दोनों में?
देखिए, अफगान तालिबान तो जाहिर है कि पुराने हैं, 94-95 जो है उसमें वो पैदा हुए थे कंधार के करीब, जो उनकी तारीख है सबको पता है, और बेसिकली वो इस्लामिस्ट भी हैं और नेशनलिस्ट भी हैं। उनका अफगानिस्तान से बाहर जिस तरह अलकायदा या दाइश का इंटरेस्ट है कि पूरी दुनिया में उनकी आइडियोलॉजी फैल जाए, तालिबान का ये इशू नहीं है। जो अफगान तालिबान है वो सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक जो अपना जो जिसे वो इस्लाम समझते हैं वो ब्रांड वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, और एक दफ़ा ज़ाहिर है उन्हें मौका भी मिला और दूसरी दफ़ा भी शायद वो इसी तरह चाहते हैं। जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका बज़ाहिर नज़रिया तो वही है जो अफगान तालिबान का है, लेकिन जो इनकी पैदाइश का अमल है वो 2006 में जो लाल 2007 में बल्कि लाल मस्जिद का जो एपिसोड हुआ था उसके रिएक्शन में ये तंजीम जो है बनी, और मुख्तलिफ जो ग्रुप थे मिलिटेंट ग्रुप्स या जहादी ग्रुप जो भी कह लें उनका एक अलायंस बना, और उस पर रफ्ता रफ्ता जो है एक पश्तून छाप वो लगती चली गई और उन्होंने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अफगान तालिबान ही थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना एक जो ज़्यादा तशद्दुद आमेज एक ब्रांड कम अज़ कम कबायली इलाकों और स्वात वगैरह के हवाले से वो डेवलप करना शुरू किया। इसमें सूफ़ी मोहम्मद की जो तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी थी वो भी शामिल हो गई, इसमें दूसरे ग्रुप भी शामिल हो गए, सो कॉल्ड पंजाबी तालिबान भी आते चले गए, और वो लोग जो के जमीयत उलमाए इस्लाम में थे या जमात इस्लामी में थे, जवान थे, लेकिन उनका ख्याल था कि ये जमातें उस तरह से सीरियस नहीं हैं शरिया नाफिस करने में जो वक्त का तकाजा है या जैसे हम चाहते हैं। तो चूँकि गर्म खून था तो खासी बड़ी तादाद में इन जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म और पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल दायरा है उस पर यकीन रखने वाली मजहबी सियासी जमातें हैं उनसे भी नाता तोड़ के तहरीक तालिबान का हिस्सा बन गए। और ज़ाहिर फौज ने शुरू में इन्हें ढील दी, मगर फिर ऑब्वियसली जब वो गर्दन तक आ गए तो फिर क्रैक डाउन करना पड़ा। क्रैक डाउन के नतीजे में बहुत से मारे गए और तकरीबन अभी मैं CNN की रिपोर्ट देख रहा था 2-3 दिन पहले, तो उनका अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 6,000 लोग पना गुजी हैं मुख्तलिफ सूबों में, और वो इस वक्त के इंतज़ार में हैं कि जब काबुल पे अफगान तालिबान का कब्ज़ा हो तो उसके बाद वो अफगान पाकिस्तान पे भरपूर तरीके से हों। लेकिन जो बदले हुए हालात रीजनल हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अफगान तालिबान शायद उन्हें इस तरह से बर्दाश्त ना करें जैसे वो पहले बर्दाश्त करते आए हैं। उसकी वजह ये लग रही है कि खुद जो अफगान तालिबान हैं वो कोई 20-21 साल की जद्दोजहद के बाद और बहुत सारे लोगों के मरने के बाद इस काबिल हुए हैं कि वो अफ़गानिस्तान में दोबारा एक डोमिनेटिंग फोर्स बन सकें। तो अगर उन्होंने इधर उधर के ममालिक में भी आते ही पंगेबाजी शुरू कर दी तो फिर जाहिर है कि उनके हक में जो सिचुएशन है बज़ाहिर इस वक्त जो है वो ख़राब हो सकती है, डामाडोल हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़िलहाल नए दुश्मन बनाना चाहेंगे अफ़गानिस्तान से बाहर, तो इस तरह से शायद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद ना कर सकें जिस तरह वो तवक्को कर रही है। और पहली बार ये भी हुआ है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उस पर अब तक लेवीज और रेंजर्स और सरहदी पुलिस वगैरह होती थी, लेकिन हालात इतने वॉलेटाइल हैं सरहद पार के मुसल्ला अफवाज जो हैं वो पोजीशन संभाल रही हैं। पहले ये जो मुसल्ला अफवाज की जो पोजीशनिंग है इस तरह से वो सिर्फ पाकिस्तान और भारत की सरहद पे होती थी, लेकिन गालिबन पहली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पे भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पीछे लाया जा रहा है और मुसल्ला अफवाज जो हैं वो फॉरवर्ड पोजीशन पे भेजी जा रही हैं।
पाकिस्तान, अब जब अफगानिस्तान की बात कर ही रहे हैं हम, तो क्या सूरत हाल है अभी अफगानिस्तान में?
नहीं, अफगानिस्तान में तो जाहिर है कि वो एक ड्रॉ फिलहाल मैच चल रहा है, लेकिन ये है कि तालिबान का जो इस वक्त मीडिया सेल है वो बहुत मुतहर्रिक है और प्रोपेगेंडा वॉर है। आपको पता है कि जो आधी जंग है वो प्रोपेगेंडे के मैदान में जीती जाती है और आधी जो है मैदान में जीती जाती है, तो ना सिर्फ मैदान में पल्ला भारी है उनका फिलहाल, बल्कि जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसमें भी वो काबिल इंतजामिया से बहुत आगे हैं। और जो उनके आइडियोलॉजी के हमदर्द हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो खुश हैं, लेकिन जो बाकी न्यूट्रल लोग हैं वो भी इस कंफ्यूजन में है कि तालिबान हो सकता है ठीक कह रहे हों कि आज इतना कब्ज़ा हो गया आज उतना कब्ज़ा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि जैसे अमेरिका ने बज़ाहिर तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वो निकालने का फैसला कर लिया है, लेकिन शायद अगर बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़्यादा टिल्ट होता है तालिबान के हक में तो वो अपनी फजाइया को इस्तेमाल करें, गल्फ में जो उनके बेसिस हैं वहाँ से उड़ाएं, हो सकता है कि कोई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जैसे पहले किर्गिजिया ने उन्हें एक बेस दिया हुआ था, तो हो सकता है कि अब भी कोई ऐसा बेस दें जहां से मुस्तकिल अमरीकी फजाई उड़ाने भर सके, या अमरीका के पास ज़ाहिर है इतनी भी कैपेबिलिटी है कि वो जर्मनी से भी B-52 बम्बार उड़ा के अफगानिस्तान पे बमबारी कर सकते हैं। उनका उन्होंने मुजाहरा 2001 में आप देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी 6 ममालिक से अफगानिस्तान की सरहद मिलती है, तो इसका मतलब है 6 ममालिक के मफादात तो ये हो गए। फिर जो इंडिया है या रशिया है या खुद यूनाइटेड स्टेट्स है या जो गल्फ की रियासतें हैं, उनके अपने मफादात होंगे, चाइना है फॉर दैट मैटर। तो आई विश के मेरा ये तज्जिया गलत साबित हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अगर ये स्टेलमेट जारी रहता है, ये मैच ड्रॉ होता है काबुल इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान अगले 5-6 महीने में, तो फिर ये मुझे रफ्ता रफ्ता इस इलाके का सीरिया बनता नज़र आ रहा है, जिसमें बैरूनी फरीक अपनी अपनी पसंदीदा मलेशियाओं की बैकिंग करेंगे और अफगानिस्तान सीरिया के मॉडल की खाना जंगी का एक नमूना बनता चला जाएगा।
जो हालिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जनाब इमरान खान साहब की, उनका और जनाब ये अफगान तालिबान का, इनका ताल्लुकात कैसे हैं?
फिर दोहराइएगा सवाल।
अफगान तालिबान और हमारे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, इनके ताल्लुकात आपस में कैसे हैं?
देखिए, बज़ाहिर तो रस्मी ताल्लुकात नहीं है, वो तो एक ग्रुप है और ये एक हुकूमत है। हालांकि इनकी फैमिलीज यहाँ हैं, खुद इनके जो शूरा है उसके इजलास हमेशा से यहीं होते हैं, जिन्हें काबुल इंतज़ामिया क्वेटा शूरा के नाम से याद करती की है। लेकिन ये हैं अब भी ढके छुपे रिलेशन। अभी तो वो मंजिल ही नहीं आई कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी सूरत हो सके। ऑफिशियली देखा जाए तो पाकिस्तान आज भी काबुल हुकूमत को ही रिकग्नाइज करता है और उसे ही अफगानिस्तान की लेजिटिमेट हुकूमत समझता है। वो दूसरी बात है कि दोनों में तेज़ी के साथ एक दूसरे के लिए बेजारी और नफरत बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि कल कला अगर तालिबान बज़ौर ताकत काबुल पे कब्ज़ा करते हैं, जैसा कि 96 में हुआ था, तो फिर पाकिस्तान जो है वो क्या करता है। अगर बाकी दुनिया ये लाइन लेती है कि चूंकि इन्होंने पॉलिटिकल सेटलमेंट के बग़ैर बज़ौर कब्ज़ा किया है, तो हम इसे हुकूमत नहीं समझते, एक काबिज़ ग्रोह समझते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी कि वो उस हुकूमत को रिकग्नाइज करे या ना करे। 96 में भी जो तालिबान की हुकूमत बनी थी, तो उसे पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम किया था। एक तो था पाकिस्तान और दूसरा था मुत्तहिदा अरब अमारात और तीसरा था सऊदी अरब। लेकिन जो पिछले 23-24 साल हैं, जाहिर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हुई है। तो अब देखना ये होगा कि नए सिनेरियो में इवन अगर तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर भी लेते हैं, तो कब्ज़े का मतलब अमन तो नहीं होता है। वो तो जब तक आपके अंदर ताकत है तो आप किसी भी इलाके पे कब्ज़ा रख सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दौर में शुमाली इत्तेहाद था जो तालिबान मुखालिफ था, हालांकि उनके पास शायद एक ही सूबा था मज़ार शरीफ का, लेकिन और तकरीबन 95% खित्ता तालिबान के कब्ज़े में था काबुल समेत। लेकिन फिर भी शुमाली इत्तेहाद जो है वो दावादार था कि वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो अगर काबुल हुकूमत जो मौजूदा है उसे बज़ोर निकाला भी जाता है दारुलहुकूमत से, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो 30 से ज़ायद सूबे हैं उनमें से एक दो सूबे उनके कब्ज़े में बदस्तूर रहें, और अगर वो रहते हैं تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان بشمول عالمی برادری کو کہ وہ کسے افغانستان کی لیجیٹیمیٹ حکومت تصور کریں. اس دوران میں اس خطرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک سیریا بن سکتا ہے جہاں ایک عرصے تک شمالی سیریا میں داعش کی حکومت بھی رہی, پھر دمشق پہ جو ہے بشار الاسد کی حکومت بھی رہی, اور اب جو ہے وہاں صورتحال بدل گئی ہے. لیکن افغانستان میں جو پچھلے 40 سال سے جو حالات ہیں وہ مجھے ایک نیا خونی موڑ لیتے دکھائی دے رہے ہیں. اگر اگلے 6 مہینے کے دوران جو مختلف افغان دھڑے ہیں وہ اس کا کوئی حل نہیں نکالتے, لیکن اگر ان کی پیٹھ پہ مختلف طاقتوں کا ہاتھ رہا کہ بیٹے ہم تیرے ساتھ ہیں تو فکر نہ کر, تو پھر مجھے اس کی قسمت اگلا نئے شام والی نظر آ رہی ہے.
سامعین ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جناب وسط اللہ خان صاحب کو, سینئر جرنلسٹ کالمسٹ بی بی سی اردو نیوز. اور وسط اللہ خان صاحب, پاکستان میں جو پناہ لینے والے افغان فوجی تھے ان کو واپس کر دیا گیا ہے افغانستان, تو کیا وہ ان کے ساتھ دوبارہ مل سکتے ہیں؟
کن کے ساتھ مل سکتے
ہیں؟ جو افغان طالبان ہیں اگر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو ان فوجیوں کو کیا بنے گا؟
نہیں, یہ تو ابھی تو سچویشن وہ نہیں ہے. ابھی تو 2 دفعہ ایسا ہو, بلکہ 3 دفعہ ایسا ہوا ہے, تقریباً 1000 فوجی جو ہیں وہ تاجکستان چلے گئے تھے پچھلے مہینے, اس لیے کہ وہ بقول ان کے کمانڈر صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے تھے, تو اس کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیسے لڑیں گے. طالبان کا گھیرا بھی ہو رہا تھا تو وہ تاجکستان چلے گئے تھے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے, 1 دفعہ چمن کے راستے افغان فوجی آئے ہیں طالبان کے پریشر کی وجہ سے اور ہم نے ان کو شیلٹر دیا, اور دوسرا اب یہ چترال والا واقعہ ہوا ہے جس میں تقریباً 48-49 فوجی آئے ہیں اور انہیں بھی میرا خیال ہے واپس انہوں نے بھیج دیا ہے, کابل انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے. تو مورائل کا ایشو تو ہے, لیکن جو افغان آرمی ہے وہ تو فی الحال اس کا تو وجود ہے, تو ابھی طالبان کے ساتھ ملنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں, اگلے 6 مہینے میں اگر توازن طاقت بہت ہی زیادہ ایک فریق کے خلاف ہو جاتا ہے تب جو میس ڈیزرشن جو ہوتی ہے کسی بھی فوج میں اس کا امکان بڑھ جائے گا, لیکن فی الحال تو وہ جیسی کیسی بھی فائٹنگ فورس ہے وہ ایک جگہ پاؤں جمانے کی کوشش تو کر رہے ہیں.
میرا نہیں خیال کہ 6 مہینے لگیں گے, سپٹمبر میں صرف 1.5 مہینہ ہی باقی ہے, سپٹمبر کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بڑی جلدی یہ لوگ آگے بڑھیں گے. تھوڑی سی بات کشمیر کے الیکشن کے متعلق بات کر لیں. صاحب آپ نے کالم میں لکھا ہے اپنے آئی ڈونٹ نو اف یو آر سرکاسٹک اور کیا کہ اس الیکشن میں مقامی معاشی سیاسی سماجی مسائل اور ان کے حل کے سوا ہر موضوع پر کھلا بات کی گئی, ذرا ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا یہ؟
نہیں تو پورے کالم میں وہ کھلم کھلا بات ہی تو ہے کہ کیا کی گئی, ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں, اور نہ صرف ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں بلکہ ایک دوسرے کے بچے جو ہیں وہ نشانے پہ لیے گئے, اور اس میں یہ ہے کہ کسی پارٹی نے یا اس کے رہنما نے ریاکاری یا سیاسی منافقت سے کام نہیں لیا, جو اندر تھا جو اصل تھا وہ سامنے لے آئے کہ وہ کیا ہیں. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تو اس سے زیادہ ڈرٹی کیمپین جو ہے وہ شاید پاکستان میں الیکشن کی تاریخ میں اب تک تو نہیں چلی, لیکن چونکہ اب یہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے اس لیے 2023 میں جو پاکستان میں الیکشن کیمپین چلنے والی ہے تو کشمیر کی دیکھ کے چاول دیکھ کے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس لیول تک وہ جا سکتی ہے, اور باقی نتائج تو ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھے, اس لیے کہ روایت بن گئی ہے اب تو کہ جو اسلام آباد میں پارٹی حکمران ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت جاتی ہے, तो अगर यही फार्मूला है तो फिर इलेक्शन करवाने का तकल्लुफ ही नहीं होना चाहिए, फिर वो खुद ही होना चाहिए कि भाई साहब हम इस्लामाबाद में आ गए तो मुजफ्फराबाद में भी हमारे लिए जगह खाली कर दी जाए। लेकिन इलेक्शन फिर भी होते हैं और नतीजा वही निकलता है जिसकी सब लोग तवक्को कर रहे हैं। तो अब भी जाहिर है कि यही तवक्को थी कि गो के तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में निस्बतन एक नई पार्टी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के मुकाबले में, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में थी तो उसका जीतना ज़रूरी था। अब ये कश्मीरी इतने सियासी तौर पे बेदार मग़ज़ हैं कि वो ये समझते हैं कि जो पार्टी पाकिस्तान में हुक्मरान है उसे ही वोट दें ताकि उनके तरक्याती काम जो भी हैं या बजट के मसाइल वो पैदा ना हो, या फिर ये कोई गैर मरई ताकत है जो एक जादू का डंडा घुमाती है और अचानक से उसी जमात के हाथ हुकूमत आ जाती है जो इस्लामाबाद में हुक्मरान होती है। उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले कम से कम 25-30 साल से, पहले आपने नाम सुना होगा एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी सरदार कयूम की,
जी जी जी, जी।
वो तारीखी एतबार से जो है एक लोकल जमात थी और कश्मीरी क़यादत थी और उस लिहाज से उसने बड़ा लंबा अरसा गुजारा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में, लेकिन फिर यह तकल्लुफ ख़त्म हो गया। और अब जो मज़े की बात है, तीनों बड़ी जमातें हारने वाली भी और जीतने वाली भी, उनकी पूरी क़यादत पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जमातें हैं लेकिन वोटर कश्मीरी है। और ये एक अजीब सी सूरत हाल है, जबकि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है जो तकरीबन 70 साल में आधे वक्त आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान रही, इस दफ़ा चौथे नंबर पे आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना जो है, बजाय इसके कि जो लोकल कश्मीरी क़यादत थी उसको मौका मिलता, पाकिस्तान की जो गालिब पार्टियां हैं उन्होंने ये मैदान भी अपने लिए चुन लिया। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल आपको जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसमें ही नज़र आएगी। यानी 5 अगस्त 2019 के क्रैकडाउन के बावजूद रियासत की जोग्राफियाई एंटिटी को बज़ाहिर पारा पारा करने के बावजूद आज भी वहाँ जो कश्मीरी क़यादत से की डोमिनेटिंग पार्टीज़ हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या महबूबा मुफ्ती की पीपल्स पार्टी है या दूसरी जमातें हैं, वो डोमिनेंट हैं, वो फर्स्ट पार्टी होती हैं। बाकी जो मेन स्ट्रीम इंडिया की दो जमातें हैं जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, वो कभी भी अपने तौर पे वहाँ हुकूमत नहीं बना सकी। हमेशा उन्हें किसी ना किसी कश्मीरी पार्टी का और ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टनर बनना पड़ता है, और वो भी जूनियर पार्टनर। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल से ये तकल्लुफ ख़त्म हो गया है। वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के बाद से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, क्योंकि जरदारी साहब इस्लामाबाद में हुक्मरान थे। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म थे। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है क्योंकि इमरान ख़ान वज़ीर आज़म है वहाँ के। तो ये बुनियादी एक फ़र्क है दोनों कश्मीरों की सियासत में।
तो लोकल जो कश्मीरी, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि जो लोकल पार्टी है तो वो हाउ स्ट्रांग आर दे, कोई स्ट्रांग है इतनी कि वो उनको, ये तो उनकी गलती हुई कि ना वो मुकाबला नहीं कर सकते इनके साथ।
नहीं, गलती हुई या हालात की तब्दीली हुई, लेकिन पिछले 30 साल से तो यही ट्रेंड है ना, जो मैंने अर्ज किया पहले ही होता था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहती थी वहाँ और दोबारा भी इलेक्शन जीत जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ हुकूमत जो है वो 5 साल के बाद दूसरी पार्टी की होती है, और दूसरी पार्टी कौन है इसका फैसला भी पाकिस्तान करता है, आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर की जो 45 रुकनी असम्बली है, उसमें से तकरीबन 1/3 सीटें वो हैं जो आज़ाद कश्मीर से बाहर की हैं, मसलन वो मेन लैंड जो पाकिस्तान है उसके अंदर होती हैं, और वो चूँकि कश्मीरी महाजरीन बड़ी तादाद में 1947 के बाद पाकिस्तान में आके बसे थे तो उनके नाम पे, उनके कोटे पे वो सीटें हैं। अच्छा, और 6 सीटें ऐसी हैं उन 45 सीटों में जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नाम पे मुख्तस हैं, यानी वहाँ से जो डायरेक्ट महाजरीन आज़ाद कश्मीर के अंदर आए वो उन्हें वोट दे सकते हैं। तो ये कोई एक सिंपल निज़ाम नहीं।